श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य और जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी। यह उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यह हम जो चौथी पुस्तक क्षेत्रानुगम उसमें 52 पृष्ठ पर आए हुए हैं। यहाँ वात वलयों का जो उसका वॉल्यूम है, क्षेत्र घनफल, क्षेत्रफल भी नहीं घनफल निकाल रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि तल में जो है लोकाकाश चहुं ओर से वात वलय से लिपटा हुआ है, तो नीचे तल के नीचे यानी सबसे नीचे 7 राजू बाय 7 राजू और उसकी चौड़ाई है 60,000 योजन, 3 वात वलय है ना। कौन कौन से 3? घनोदधिवात, घनवात और तनुवात। अंदर की ओर लोकाकाश की ओर है वो घनोदधिवात है, बीच में घनवात है और अंत में अलोकाकाश की तरफ तनुवात है। तो ये नीचे की ओर 20,000 योजन यानी 60,000 योजन हो जाते हैं उसकी चौड़ाई। तो उसका नीचे का हमने घनफल निकाला था, 7 राजू गुणा 7 राजू, ये जगत प्रतर होता है। और वो जगत प्रतर कितना मोटा है? तो 60,000 योजन जगत प्रतर। ये नीचे के वात वलयों का हमने घनफल निकाला था। उसके बाद हमने पढ़ा था, ये ऊपर से तीसरा पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था कि एक राजू उत्सेद रूप यानी नीचे से अभी एक राजू ऊंचाई तक, 7 राजू आयाम रूप और 60,000 योजन बाहल्य रूप, उत्तर और दक्षिण संबंधी लिखा है, वो पूर्व और पश्चिम संबंधी उन्होंने करेक्शन किया है। दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित वात क्षेत्र को बुद्धि से पृथक करके, यानी उसका भी घनफल निकालना है तो बुद्धि में ही सब करना है ना, उसको अलग निकाल कर उसे जगत प्रतर प्रमाण से निबद्ध करने पर, यानी है तो 1 राजू गुणा 7 राजू गुणा 60,000, तो उसको जगत प्रतर प्रमाण करना पड़ेगा। हमें तो प्रतर राजू में हमें उदाहरण मालूम है क्योंकि 1 राजू गुणा 7 राजू, परंतु हमें उसको प्रतर राजू में कन्वर्ट करना है, प्रतर जगत प्रतर में कन्वर्ट करना है। 49 प्रतर राजू, राजू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जगत प्रतर। तो अभी हमने निकाला था 1 राजू हाइट वाला, ये 1 राजू हाइट वाला और ऐसा लेना अंदर 7 राजू लंबाई वाला और चौड़ाई कितनी उसकी 60,000 योजन। परंतु 60,000 और 60,000 दोनों ओर का लेना पड़ेगा। अभी तल में तो एक ही बार लिया हमने 60,000, अब साइड दोनों साइड की बातें निकाल रहे हैं तो 60,000 और 60,000 120,000 हो जाएगी। ऐसे और नहीं, हाँ यानी पूरा ही नीचे,
तो वो नीचे का तो साइड पे भी आ जाएगा।
नहीं, उसके ऊपर की बात है। डबल नहीं होगा ये, तो यहाँ तक ले लेंगे ना हम इसको, ये डबल लिया ऐसा कहना है आपको। पार्श्व भागों की बात, अभी साइड की बात है, पहले नीचे की बात की। पूरी साइड एक राजू तक है अभी, अभी ऐसा लेना है साइड में, पहले ऐसे नीचे नीचे पूरा लिया था, अभी साइड में एक राजू तक, एक राजू ऐसा हाइट में, सात राजू ऐसा, और चौड़ाई उसकी कितनी है 60,000 योजन, यहाँ भी 60,000 योजन और यहाँ भी पार्श्व भागों में यानी साइड में लिखा है, नीचे तल में नहीं। देखो नीचे यहाँ दिया पहले, अभी उसके ऊपर का हाँ साइड वाला, चारों बाजू पर दो दो बाजू का निकाल रही ना, क्योंकि उत्तर दक्षिण है सर्वत्र सात राजू है। अभी ऐसा पकड़ो, या हम ये लोकाकाश ऐसा निकालेंगे, मान लेते, और यहाँ सात राजू है, यहाँ सात राजू है, तो यहाँ तो सात राजू व एक राजू होगा, यहाँ भी सात राजू व एक राजू होगा, परंतु यहाँ नीचे तो सात राजू है परंतु ऊपर एक राजू तक आते आते थोड़ी उसकी कम हो जाएगी ना, तो उसका हिसाब अलग निकालेंगे, तो इसलिए भी साइड की बात कर रहे हैं। एक राजू तक यहाँ से नीचे से तल से लेकर एक राजू तक, और उसके साइड में ऐसा 60,000 योजन, और लंबाई तो दक्षिण उत्तर हमने देखा है, दक्षिण उत्तर लंबे उसके सात राजू, यानी सात राजू गुणा एक राजू हाइट, और ऐसी विर्थ उसकी 60,000 योजन, एक बाजू और दूसरी बाजू दोनों बाजू की 60,000 योजन, तो 120,000 योजन होती है। तो इन तीनों का गुणाकार करेंगे तो यहाँ पार्श्व का अर्थ होता है साइड, बाजू में दोनों बाजू का ये निकाला, ये लगेगा भी। देखो ये उदाहरण लिखा है उसके ऊपर हम पढ़ रहे, एक राजू उच्छेद, उच्छेद देने हाइट, सात राजू आयाम, दक्षिणेत्तर फैला है परंतु वो पूर्व, देखो ये पूर्व है पश्चिम है और ऐसा दक्षिण उत्तर है, परंतु हम पूर्व के बाजू में और पश्चिम के बाजू में ऐसा कहें, इसलिए उन्होंने वो दक्षिण उत्तर का पूर्व पश्चिम किया समझने के लिए। ऐसा भी कहेंगे तो भी कोई यानी उसमें से सही अर्थ निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर दक्षिण संबंधी है ना, इस संबंध इस बाजू का जिसको हम दक्षिणोत्तर सात राजू है उसकी बात चल रही है, समझना चाहिए। बाद में कहेंगे तो ये नीचे सात राजू और ऊपर थोड़ा कम राजू ऐसा कहेंगे, वो कितना कम अभी देखेंगे हम, क्योंकि सात राजू से वो सवा छ उसका वन सेवंथ कम हो जाता है, 6.17 आ जाएगा, वहाँ इतना कम होता है उसमें। तो बात क्षेत्र को बुद्धि से पृथक करके उसे जगत प्रमाण से निबद्ध करने पर, जगत प्रमाण से निबद्ध करना ये उसमें बताऊंगी, अभी उदाहरण में हम देखेंगे। 120,000 योजनों के सातवें भाग बाहल्य प्रमाण जगत प्रतर होता है, इसी को उदाहरण में देखेंगे। एक राजू गुणा सात राजू गुणा 120,000 योजन, इतना तो समझ में आया, एक राजू गुणा सात राजू गुणा 120,000 योजन, तो कितने आएंगे, सात के सात प्रतर राजू आएंगे, पर हमको जगत प्रतर में हमको गणित चाहिए, तो उसके लिए हम कहेंगे 49 प्रतर राजू का एक जगत प्रतर होता है, तो इतने का कितना होगा, तो इस पूरी जो संख्या आएगी उसको 49 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 49 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका सात का भाग दिया हमने, तो 120,000 का सातवां भाग हो जाएगा। देखो यहाँ पढ़ते हम, अधोलोक के तल भाग से ऊपर एक राजू प्रमाण, वात वलय से रुके हुए क्षेत्र का घनफल, उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक प्रत्येक दिशा में जगत श्रेणी प्रमाण लंबा, एक राजू ऊंचा, तीनों वात वलयों का बाहल्य 60,000 योजन, दोनों दिशाओं के वायुरुद्ध क्षेत्र 120,000 योजनों के प्रमाण में, दोनों मिलके 120,000 हो गया, सात का भाग देने पर 17,142 पूर्णांक 6 सप्तमांश योजन लब्ध आते हैं और ऊंचाई में राजू के स्थान में जगत श्रेणी का प्रमाण हो जाता है। ये कैसा निकाला? ये इस तरह से निकाला, 49 से उसको डिवाइड किया तो उसको डिवाइडेड बाय 7 उसका उत्तर आ गया। अतएव 17,142 पूर्णांक 6 सप्तमांश योजनों के जितने प्रदेश हो उतने जगत प्रतर प्रमाण उत्तर और दक्षिण में अधोलोक के तलभाग से एक राजू ऊंचे क्षेत्र तक वात वलय रुद्ध क्षेत्र का घनफल होता है। पहले हमने नीचे का तलिया का निकाला, अभी इस साइड का और इस साइड का निकाला, दोनों बाजू का, तो उनकी अभी हम उसको मिला देंगे। इस घनफल को पहले तलभाग के घनफल से आए हुए क्षेत्र में मिला देने पर, यानी पहले हमने 60,000 निकाला था, 60,000 जगत प्रतर, 60,000 योजन जगत प्रतर निकाला था, उसमें भी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 7, ये कैसा निकला अभी पता चला? हाँ भाई, पता चला 7 डिवाइडेड बाय कैसा किया? हाँ, इन दोनों की टोटल करेंगे तो 540,000 यानी 5,40,000 डिवाइडेड बाय 7 योजन मोटा जगत प्रतर। ये खाली योजन नहीं लिखना, इतने योजन जगत प्रतर, जगत प्रतर का अर्थ कितना है? 7 राजू गुना 7 राजू, 49 स्क्वायर राजू इज इक्वल टू 1 जगत प्रतर होता है, उतने जगत प्रतर, क्योंकि हमने इसको जगत प्रतर में कन्वर्ट किया है। पुनः दूसरी दो अर्थात अब ये पूर्व और पश्चिम दिशाओं में उसका उन्होंने उत्तर और दक्षिण कर दिया। उत्तर और दक्षिण दिशाओं में तलभाग से एक राजू ऊंचे, एक्चुअली परंतु वो बताना चाहते ये बाजू फ्रॉम पूर्व टू पश्चिम, तो उसके लिए दक्षिण और उत्तर भाग की बात की। ये पूर्व पश्चिम है परंतु ये पूरी ही उत्तर और ये पूरी ही दक्षिण हो गई, इसलिए उन्होंने यहाँ बदली किया है, वो जो करेक्शन किया है। तो यहाँ भी 60,000 योजन चौड़ा, यहाँ भी 60,000 योजन चौड़ा, एक राजू ऊंचा, परंतु ये तल में 7 राजू है तो ऊपर थोड़ा टेपरिंग होगा, क्योंकि लोकाकाश का आकार ऐसा है ना, वेत्रासन, नीचे अधोलोक का आकार वेत्रासन समान है, नीचे 7 राजू से ऊपर कम होगा। तो कहते हैं तलभाग से एक राजू ऊंचे, तलभाग में 7 राजू लंबे और एक राजू ऊपर आकर मुख में एक राजू के 7वें भाग अधिक 6 राजू लंबे, यानी 6 पूर्णांक 1 सप्तमांश, 6 राजू प्लस 7 राजू का एक भाग लिखा है ना उन्होंने, और 60,000 योजन बाहल्य रूप से स्थित वात वलय क्षेत्र को जगत प्रतर प्रमाण से करने पर, यानी पहले हम उसका वो निकालेंगे तीनों का गुणाकार करके और जितने आएंगे उसको 49 से भाग देंगे, क्योंकि हमारा उत्तर प्रतर राजू में आ रहा है और हमको जगत प्रतर करना है, तो 49 प्रतर राजू का एक जगत प्रतर, तो इतने का कितना? तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या हम देखते हैं अभी आगे नीचे उदाहरण में देखेंगे। देखो तो कितना होता है, 55,20,000 योजनों के 343वें भाग प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर होता है। अब ये कैसा निकाला उन्होंने उसको देखते हैं। हमको एवरेज निकालना है, नीचे 7 राजू है और ऊपर 6 पूर्णांक 1 सप्तमांश है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों की टोटल करेंगे और फिर उसको दो से डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज मिल जाएगा। तो 7 अधिक 6 पूर्णांक 1 सप्तमांश, सही सात 42 से 43 सप्तमांश, इसकी टोटल करनी है। यहाँ कोई नीचे छेद नहीं है, समझ छेद करने के लिए ये नीचे का पूरा छेद लेंगे तो ऊपर साथ ही साथ 49 करेंगे, 49 + 43 92 डिवाइडेड बाय 7। ये तो सिंपल गणित है, नहीं समझ में आए तो पूछना, समझ में आए? ये तो दोनों की टोटल हो गई, एवरेज निकालने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 2, दो से भाग दो तो 92 डिवाइडेड बाय 14 आ गए। ये तो एक बाजू निकली एवरेज की, हमको घनफल निकालना है तो 92 डिवाइडेड बाय 14 गुना एक राजू है ना, और गुना दोनों बाजू के जो 120,000 60,000 और 60,000 मिलके 120,000 इतना घनफल होगा। तो 49 में एक जगत प्रतर होता है तो इतने में कितने जगत प्रतर हो गए, तो उसके लिए इसको डिवाइडेड बाय 49 करना पड़ेगा, जो संख्या आएगी उसको हम 49 से डिवाइड करेंगे, बराबर। देखो उदाहरण पढ़ेंगे हम, 49/7 प्लस 43/7 उन्होंने समच्छेद करके लिख दिया है इज इक्वल टू 92/7। अभी इसका उन्होंने दो से भाग दिया तो 92/14 आ गए, तो 92/14 इसको उन्होंने दो गुना किया है 60,000 को दो गुना करने के बदले उसी को दो गुना किया उन्होंने, कहीं तो दो से गुना करना था ना, तो ये हमने दो से गुना यहाँ लिख दिया था, यानी 60,000 गुना दो इस तरह से। तब इसका जो उत्तर है हाँ, तो यहाँ 60 करेंगे और यहाँ 7 दो का भाग दिया, ये बराबर हो गया ना, नीचे 14 था और ऊपर हमने 120,000 लिखा था, 14 के 7 कर दिए दो का भाग देकर, 120,000 का भी दो का भाग दिया तो यहाँ 60,000 हो गए। 49 गुना 7 343 होते हैं, हमें तो मालूम है 7 गुना 7 गुना 7 हो जाता है, तो छेद में 343 आ गए 343 और ऊपर 92 × 60,000 तो वो 552 55,20,000 और डिवाइडेड बाय 343। ये दोनों यानी उत्तर की ओर का और दक्षिण की ओर का, फ्रॉम पूर्व टूवर्ड्स पश्चिम ऐसा है, पूर्व से पश्चिम तक, परंतु उत्तर की दक्षिण की भाग का और ये उत्तर की भाग का, ये हो गया यानी हमको तल का मिल गया, दोनों साइड का मिल गया यानी पूर्व पश्चिम का मिल गया और दक्षिण उत्तर का भी मिल गया, यानी नीचे एक राजू तक का सब मिल गया है। अभी हमको और भी ऊपर तक साइड का निकालेंगे और ऊपर का भी निकालेंगे तब सबकी टोटल हो जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे, इससे अभी जो हमने दोनों की पहले टोटल की थी नीचे के और साइड की, इसको भी उसी में मिला देना, इसे पूर्वोक्त घनफल रूप से आए हुए क्षेत्र में मिला देने पर 3,19,80,000 योजनों के 343वें भाग प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर होता है, यानी इतने जगत प्रतर, इतने योजन जगत प्रतर कैसे निकाला। देखो ऊपर हमने 5,40,000 देखे थे ऊपर से तीसरी लाइन में उदाहरण में, डिवाइडेड बाय 7 हाँ प्लस अभी ये जो हाँ 55,20,000 डिवाइडेड बाय 343 है, दोनों का समच्छेद करने पर 343 छेद में आया, यहाँ 7 है तो उसको 49 से गुणा करेंगे ऊपर की फिगर को और फिर दोनों की टोटल करेंगे तो वो कितना आता है, तो 3,19,80,000 डिवाइडेड बाय 343 इतने योजन जगत प्रतर, यहाँ तक आए ना, यानी नीचे के एक राजू और तल इतना आ गया। अब आगे पुनः उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक, इसको उन्होंने पूर्व और पश्चिम पार्श्व युगलों में कहा है, पूर्व और पश्चिम पार्श्व युगलों में, दिस साइड और दिस साइड, ये बाजू और ये बाजू, ये पूर्व है ये पश्चिम है उसके पार्श्व युगल, जिसको हम दक्षिणोत्तर हमेशा कहते थे, परंतु ये पूरी पूर्व की बाजू है ना, ऐसा देखेंगे तो दक्षिणोत्तर, परंतु ये बाजू कौन सी, तो पूर्व दिशा की और ये पश्चिम दिशा की, इसलिए तो पूर्व और पश्चिम पार्श्व युगलों में उन्होंने करेक्शन किया हुआ है पीछे शुद्धि पत्रक में, यहाँ लिखा ना पुनः उत्तर और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक, ये पूरे इतने शब्द के लिए उन्होंने लिखा है पूर्व और पश्चिम पार्श्व युगलों में। अभी हमको ऊपर तक देखना है, एक राजू की तो बात हो गई, अभी कितने राजू रह गए? 13 राजू रह गए ना, तो हाइट उसकी 13 राजू होगी, तो क्या है 7 राजू विष्कम्भ। हमें मालूम है यहाँ सर्वत्र 7 राजू है। ये पश्चिम की ओर का हुआ, दक्षिण से उत्तर तक, परंतु है वो पश्चिम की ओर का और पूर्व की ओर का, कितना है 7 राजू, सर्वत्र 7 राजू है। और फिर हाइट अभी कितनी है 13 राजू है। अभी मोटाई में जो फर्क है, वहाँ 60,000 योजन नहीं है, वो मोटाई अभी बताएंगे। देखो क्या कहते हैं, 7 राजू विष्कम्भ रूप से सातवी पृथ्वी के तलभाग से लोकांत तक 13 आयु राजू आयाम रूप से। सातवी पृथ्वी का तल, अभी जो हमने एक राजू देखा, सातवी पृथ्वी के तल के नीचे का देखा भाग, पृथ्वी के नीचे वात वलय है और उसका एक राजू क्षेत्र भी, उसके नीचे जो कुछ अन्य, उसको स्थावर की कलकल भूमि कहते, कलकल कुछ कहते, तो उसको छोड़ा भी। हाँ, नित्य निगोद भी कहते हैं उसको, स्थावर की, स्थावर का देश भी कहते हैं। तो ये सातवीं पृथ्वी के तल से लेकर 13 राजू हाइट तक, यानी ऊपर तक, लोक के ऊपर तक, देखो कितने हैं 13 राजू आयाम रूप से। एक राजू की बात हमारी हो चुकी है, अब 13 राजू हाइट, 7 राजू सर्वत्र उसकी विर्थ, और अधोलोक की अपेक्षा 16-12 और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा 16-12 योजन बाहल्य रूप से दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित वात क्षेत्र को पहले हम निकालेंगे, 13 × 7 और गुणा जितनी वात वलय की मोटाई है वो कितनी बताई, 16-12 16-12, ये क्या भानगढ़ है? मराठी में भानगढ़ कहते हैं। ये क्या घोटाला है? तो देखिए वात वलयों की जो मोटाई है, जो कुछ है आपको मालूम है 16-12 क्या है, मालूम है? नहीं मालूम। तो 3 वात वलय है, तो बाहर से इनर की ओर 7, 5 और 4, 7 राजू 5 राजू 4 राजू, ये नीचे 16 हुआ है। अब यहां तक, यानी नीचे इतनी मोटाई है 16, 7, 5 और 4, और जब मध्य में आते हैं तो वो 5, 4 और 3 हो जाते हैं। यहाँ 7, 5 और 4 थी, 7, 5, 12 और 4, 16, अब ये 5, 4 और 3 इतनी हो जाती है मोटाई उसकी, तो कितनी हो गई 12। नीचे 16 थी, वो कम होके मध्य लोक के यहाँ 12 हो जाती है, फिर ब्रह्म लोक के यहाँ 16 योजन चौड़ी, तीनों की मिलकर 16 योजन चौड़ी होती है, और फिर ऊपर जो है वो फिर 12 योजन होती है, इसलिए 16-12 16-12 कहा। देखो इस पढ़ेंगे फिर तीनों की मिलकर विड्थ, जैसे हमने नीचे 60,000 योजन देखी थी, नीचे हमने 60,000 योजन देखा, उसी को यहाँ 16 योजन और 12 योजन देख रहे हैं। तीनों वात वलय की मिलकर मोटाई देखो, अधोलोक की अपेक्षा 16-12 और ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा 16-12, हाँ, तो सेंटर में 12 होती है, नीचे ही 16 है और यहाँ ब्रह्मलोक के पास भी 16 है, फिर ऊपर एक राजो है ना, वहाँ फिर 12 हो जाती है, तो 16-12 16-12। तुरंत नहीं, ब्रह्म लोक के पास 16 हो जाती है, ये मैंने बताया नहीं रहा, ये चित्र ये दिख नहीं रहा, अभी इसमें नीचे तो हमने 60,000 योजन, एक राज्यों तक तो 60,000 योजन है, और ऊपर जो है, अब ये नीचे एक राजू का तो समझ लेना, अभी यहाँ 16 योजन मोटा है और वो 12 योजन मोटा हो जाता है, कम होता है, फिर 16 योजन होता है और फिर बाजे। मैंने ये तो बहुत बड़ा करके समझाने के लिए बताया, ये तो कंपेयर टू यहाँ 5 राजू और 1 राजू वो कुछ नहीं, 16 योजन कुछ नहीं है, ख्याल है ना। नीचे 16 योजन ब्रह्म यानी मध्य लोक के पास, 12 योजन, फिर 16 योजन और फिर ऊपर ऊपर जो एकदम लोकाकाश के अंत में वो फिर 12 हो जाते हैं। पार्श्व भाग की बात है, हाइट की बात नहीं है, इसको पार्श्व भाग कहते, साइड की बात चल रही। यहाँ से भी ऐसे करेंगे, इन दोनों बाजू से भी ऐसा ही कम होगा। हाँ ऐसा ही, वो कहाँ कितनी विड्थ कितनी है। हाँ देखो अभी इसको पढ़ेंगे हम। जगत प्रतर होता है, जगत प्रतर रूप करने पर 164 योजन कम 18,000 योजनों के 343वें भाग प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर होता है। अभी इसको हम गणित से निकालेंगे। 13 × 7 हमने देखा था, 13 हाइट है और 7 सर्वत्र दक्षिणोत्तर, हम देखते ना पूर्व की ओर की और पश्चिम की ओर का, परंतु दक्षिणोत्तर फैला हुआ, ऐसे 7 राजू हैं, तो 13 × 7 = 91 हो गए। अब जो हमने नीचे 16 और बीच में 12 देखा था, उसका एवरेज निकालना है, 16 12 16 12, तो सर्वत्र उसका एवरेज निकालना है, तो 16 और 12 कितने हो गए, 28 का आधा करो 14, तो 14 राजू का एवरेज हम निकालेंगे। 14 योजन, तो 91 को 14 से गुणा किया, ये बीच में एडिशन करो, 16 + 12 = 28 और 28 / 2 = 14। ये उन्होंने करेक्शन शुद्धि पत्रक में भी लिखा है और हमें भी वो 14 कहाँ से आए वो समझना चाहिए। ये 16 और 12 ये तो वात वलय की मोटाई है, वो अलग अलग है, इसलिए उसका एवरेज निकाला हमने 14। तो अभी हमारे पास 7 राजू गुणा 13 राजू गुणा 14 योजन, तो हमको घनफल मिलेगा, परंतु वो एक साइड का मिलेगा तो उसको दो गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने पहले 91 को 14 से गुणा करके 1274 निकाले और फिर उसको दुगुणा किया, क्योंकि दोनों ओर के निकालना है, तो 2548 आ गए। तो 2548 ये प्रतर राजू में आ गए, है ना। इसे जगत प्रतर रूप से करने के लिए 7 से गुणा करें और 343 का भाग दें। अकेले 49 से भाग देते तो भी चलता, परंतु ये छेद पहले वाले के समान करने के लिए उन्होंने अभी 343 कर दिया है। मल्टीप्लाइड बाय 7 और डिवाइडेड बाय 343 इज एज गुड एज डिवाइडेड बाय 49, बराबर है ना। 7 से गुणा किया और 343 से भाग दिया, इसका अर्थ क्या है, 49 से ने 49 से भाग दिया, बराबर। ये छेद और हमने पहले जो नीचे का सब एडिशन किया था उसका छेद 343 आता है, इसलिए अभी से उन्होंने छेद समान करने के लिए इसको भी 343 की भाषा में लिख दिया। खाली इसको डिवाइडेड बाय 49 करते तो भी चल जाता, ख्याल है। हाँ, तो इतने योजन मोटा जगत प्रतर आता है, यानी कितने योजन जगत प्रतर, ये बात चल रही है। 49 से डिवाइड करने का कारण ही है कि प्रतर राजू में हमको गणित मिला है और हमको जगत प्रतर में हमको उसको कन्वर्ट करना है। यह उत्तर और दक्षिण में सातवीं पृथ्वी से लेकर लोकांत तक वातरुद्ध क्षेत्र का घनफल होता है। एक्चुअली पूर्व और पश्चिम में ने, जैसे हमने यहाँ देखा है सामने, उत्तर से दक्षिण तक, परंतु वो अभी ये समझना नहीं, यहाँ कम ज़्यादा है, ये भले दिखे नहीं आपको, इस बाजू का हमको दोनों बाजू का निकला है, अभी फ्रंट का और बैक, यानी अभी एक्चुअली उत्तर का और दक्षिण का निकालेंगे, पूर्व से पश्चिम तक, परंतु उत्तर का या दक्षिण का और उत्तर का, इस तरह से ये भाषा समझ लेंगी ना तो कोई ये नहीं है। अब आगे पुनः, अब पूर्व और पश्चिम दिशा में लिखा है तो उत्तर और दक्षिण दिशा में लिखना चाहिए। अब उत्तर और दक्षिण दिशा में सातवीं पृथ्वी के पास एक राजू के सातवें भाग अधिक छह राजू प्रमाण मूल में विष्कम्भरू। अभी ये जो हमारे हमने यहाँ तक एक राजू तक तो देखा था, एक राजू तक की बात की थी, तो वहाँ छह पूर्णांक एक सप्तमांश राजू यहाँ विस्तार था, उसके नीचे का हमने निकाला है गणित। अब जो बचे हुए तेरह राजू का प्रमाण निकालना है, तो ये सर्वत्र अलग अलग फैला हुआ है, तो हाइट सर्वत्र तो तेरह राजू है, परंतु अभी ये नीचे कितना है मूल में, तो सातवें एक राजू के सातवें भाग अधिक छह राजू यानी छह पूर्णांक एक सप्तमांश राजू मूल में विष्कम्भ रूप से, और छह राजू उच्छेद रूप से, ये अधोलोक की बात की, छह राजू उच्छेद रूप, नीचे छह पूर्णांक एक सप्तमांश वृत्त नीचे मुख में, और यहाँ पर एक राजू तक आ गया, परंतु यहाँ विष्कम्भ छह राजू। मध्य लोक के पास एक राजू मुख रूप से और 16-12 योजन प्रमाण बाहल्य रूप से दोनों ही पार्श्वों में स्थित वात क्षेत्र को जगत प्रमाण प्रतर प्रमाण से करने पर 4200 योजनों के 343वें भाग प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर होता है। अब ये उन्होंने नीचे की पृथ्वी से, सातवीं पृथ्वी से, यानी अभी हमने देखा ना एक राजू ऊपर से लेकर अधोलोक के छह राजू का ही निकाला, पहले ऊपर का नहीं लिया, क्योंकि और मुख और ये इसका एवरेज निकालने के लिए नीचे तो छह पूर्णांक एक सप्तमांश और यहाँ एक राजू है तो उनका एवरेज निकालेंगे, बराबर। हाइट रिमेनिंग हाइट छह राजू, अब यहाँ मोटाई कितनी है बात वाले की, तो यहाँ 16 है और यहाँ 12 है तो उसका भी एवरेज 14 निकलेगा, और फिर दोनों ओर का निकालेंगे तो उसका उदाहरण देखो, ये 43/7 यानी छः पूर्णांक एक सप्तमांश अधिक एक राजू, 7/7 यानी अधिक एक राजू, अभी 50/7 आए उसका एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 यानी 50/14 आ गए। अभी 50/14 उसको दोनों ओर के करने के लिए उन्होंने 2 से गुणा किया, वो 50/7 आता है, 50/7 को उन्होंने 14 से गुणा किया, क्यों गुणा किया, वात वाले की मोटाई का एवरेज 16+12/2 बराबर, तो 700/7 उत्तर आया, 700/7 आया। अभी हाइट कितनी है 6 राजू, तो उससे गुणा किया तो 4200/7 ये अधोलोक के रिमेनिंग क्षेत्र का जो वात वलय का घनफल है वो उतना आया। अब इसे जगत प्रतर रूप से करने पर तो 49 से भाग देना पड़ेगा, 49 का भाग देने से 42 से और उसको भाग देना 343 योजनों के जितने प्रदेश हो उतने जगत प्रतर लब्ध आते हैं। यहाँ लिखा है पूर्व और पश्चिम, परंतु हमें समझना ये उत्तर की यानी इस बाजू का फ्रंट का और बैक का समझने के लिए, साइड में तो सर्वत्र सात राजू निकाला था, ये फ्रंट व्यू जो हमको हमेशा दिखता है उसकी बात चल रही है, इसलिए उसको उत्तर और दक्षिण कहा। तो उसको अभी हमने नीचे से एक राजू के बाद रिमेनिंग छह राजू की बात निकाली, छह राजू हाइट है और जो विड्थ है वो अलग अलग है, नीचे छह पूर्णांक एक सप्तमांश और ऊपर एक, उसका एवरेज निकाला दोनों ओर का निकाला, और फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 और मल्टीप्लाइड बाय मोटाई, मोटाई का एवरेज 14, तो हमको घनफल निकला दोनों का। तो सातवीं पृथ्वी से मध्यलोक तक वायुरुद्ध क्षेत्र का यही घनफल है। अभी ऊपर का जो ऊर्ध्वलोक का ये साइड का भी रह गया है, क्योंकि यहाँ का तो सर्वत्र समान था तो उन्होंने एक साथ दोनों ओर का निकाला था, ये जो फ्रंट व्यू हमको दिखता है उसका नीचे का भी हमने निकाला, अभी अकेला भी ऊपर का रह गया और एकदम टॉप का रह गया है ना, तो अभी ऊर्ध्व लोक का निकालेंगे। अब आगे 55 पेज पर पुनः मध्य लोक के पास एक राजू, ये जो दिख रहा है ना यहाँ एक राजू, ये पूरा वात वाला ऐसा फैला हुआ है ना, साइड से कितना ज्यादा है वो तो आपको दिख रहा है, या ऐसा कितना है तो 16 है या 12 है इसके आगे आया हुआ, परंतु ये पूरा ही लिपटा हुआ है सभी सभी ओर से, उसकी बात चल रही है। तो मध्य लोक के पास एक राजू, ब्रह्म लोक के पास 5 राजू, और लोकांत में एक राजू विष्कम्भ, अलग अलग है उसका, मृदुंगाकार है। 7 राजू उच्छेद, ये पूरा ही उच्छेद एक साथ लिया है, तथा 12, 16 और 12 योजन प्रमाण बाहल्य, मध्यलोक के पास 12 प्लस 16 फिर 12, ऊर्ध्वलोक के, अब ये पूर्व और पश्चिम को फिर उत्तर और दक्षिण किया, उत्तर और दक्षिण दोनों ही पार्श्वों में यानी उनके साइड में, यानी फ्रंट व्यू है वो उत्तर दक्षिण है, अब ये बैक व्यू है वो तो उत्तर है, तो उनके बगल में उनके साइड वाले वात वाले की बात चल रही है। दोनों ही पार्श्वों में स्थित वात क्षेत्र को जगत प्रतर प्रमाण से करने पर 528 योजनों के 49वें भाग बाहल्य रूप जगत प्रतर होता है। ये कैसे निकाला, 5 + 1 6 हुए, उसका आधा किया 3 एवरेज हुआ, एक राजू 5 राजू ऐसा जो है ना अलग अलग, तो उसका निकाला एवरेज, 3 को 7 गुणा किया तो 21 आ गए, 7 हाइट है ना, 7 राजू हाइट है ऊर्ध्वलोक की, उसको 21 हो गए, अभी 7 × 3 2102 गुणा कर दिया दोनों ओर की तो 42 हो गए, 42 को 14 से गुणा किया तो 588 आ गए। अभी जगत प्रतर प्रमाण करने के लिए इसको 49 से डिवाइड करना पड़ेगा, 49 का भाग देने पर 528 बाय यानी डिवाइडेड बाय 49 योजनों के जितने प्रदेश हो उतने जगत प्रतर लब्ध आते हैं। 14 ही निकाला, हाँ 14 ही होता है उसका भी, साइड से आप कहना चाहते हैं और ये फ्रंट से, उतना नहीं लिया उन्होंने, थोड़ा बढ़ जाएगा इस, क्या कहना चाहते हैं आप, साइड में उसकी वो लेंथ बढ़ जाएगी ऐसा कहते हैं ना, फिर भी हमने 13 ले लिए, हाँ सूक्ष्म अलग होता है एवरेज ले लिया, क्योंकि साइड में जो है ना ऐसा ऐसा और ऐसा, फिर भी हमने उसको 13 ही पकड़ा था, ये बात कहना चाहते हैं। तो ये कितना निकला देखो, 528 डिवाइडेड बाय 49, यही ऊर्ध्वलोक के पूर्व और पश्चिम दो दिशाओं के वात रुद्ध क्षेत्र का घनफल है। लोक के ऊपरी भाग में, अभी ऊपर जो है लोक का ऊपर भाग, एक राजू है चौड़ा, 7 राजू है ऐसा ऊपर से देखेंगे तो, एक राजू गुना 7 राजू, कुछ कम एक योजन बाहल्य रूप से स्थित वात क्षेत्र को, यहाँ का वात क्षेत्र कितना है एक योजन में कुछ कम, नीचे कितना देखा था 60,000 योजन, और ऊपर का तीनों ही वात वाले मिलके एक राजू में कुछ कम, एक योजन में कुछ कम, देखो लोक के ऊपरी भाग में एक राजू विष्कम्भ, 7 राजू आयाम रूप से, कुछ कम एक योजन बाहल्य रूप से स्थित वात क्षेत्र को जगत प्रतर प्रमाण से करने पर 303 योजनों के 2240वें भाग प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर होता है। ये कैसा निकाला उन्होंने, एक राजू गुणा 7 राजू और फिर 303 बाय 320 वो डिवाइडेड बाय 49 चाहिए, डिवाइडेड बाय 7 लिखा है ना, क्योंकि हमको जगत प्रतर प्रमाण करने के लिए डिवाइडेड बाय 49 होता है। एक वो एक योजन में कुछ कम है ना, वो उसका उत्तर है। एक योजन में कुछ कम है, हमने योजनों में बाकी सब निकाला था। हमने पहले भी पढ़ा था, दो कोस एक कोस और एक कोस में कुछ 1425 या कितने इतने धनुष कम, ऐसा कुछ पहले, अभी इतना याद नहीं है। तो एक पूरा चार कोस का एक योजन होता है, तो एक योजन में कुछ कम, ये कुछ कम का प्रमाण 303/320। यही लोक के अग्रभाग के वात रुद्ध क्षेत्रा घनफल है। इस सर्व घनफल को एकत्रित करने पर, अभी इसको दुगुना करने का सवाल ही नहीं है, टॉप की बात है ना। जैसे तल के बाग एक बार हमने निकाला, साइड थे तभी दो दो गुना किया था, तल का और टॉप का वो तो एक बार ही लेना है। अभी इतने सब हमने निकाले, कितने निकाले देखो, तल का निकाला, फिर दोनों पार्श्व भागों का और ये दोनों पार्श्व भागों का, यानी एक ये, फिर ये दोनों मिलकर, फिर ये दोनों मिलकर, फिर अधोभाग का, यहाँ तो सर्वत्र एक साथ निकाला 13 राजू का, फिर अधोभाग का 6 राजू का अलग निकाला और ऊपर का 7 राजू का अलग निकाला और फिर टॉप का निकाला। पहले हम टोटल करते ही आए थे थोड़ी थोड़ी, अब इन सबकी टोटल करेंगे तो वात रुद्ध क्षेत्र का घनफल मिलेगा। देखो इन सर, हाँ, एक योजन के हमने 320 टुकड़े किए, उसमें से 303 ही भाग, यानी योजन में कम है ना, 320 के 320 होते तो एक योजन पूरा होता, तो कितना कम है, तो 17/20 योजन कम है, 17/320 इतना कम है, क्या ले? तो इन सर्व घनफल को एकत्रित करने पर 1,24,19,83,487 योजनों में 1,09,760 का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतने योजन प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर होता है। अभी तक जितने हमने संख्याएं निकाली थी, पहले हम तो टोटल करते करते ही आए थे, तो ये जो 344 लिखे पहले दो फिगर में छेद में, वो 343 करना। तो सबका कॉमन डिनोमिनेटर है वो 1,09,760 आया सबका, जहाँ जहाँ 343 है मल्टीप्लाइड बाय 320 करेंगे उसको, ऊपर ऊपर के उसके जो अंश है वहाँ 320 का भाग गुणा करना, सबका कॉमन छेद करना है। देखो सबका छेद समान नहीं है, सबका छेद समान करने के लिए क्या करेंगे, देखो 343 है, कहीं 343 है, कहीं 49 है, कहीं 2240 है, हाँ हाँ उसको 43 करना, मैंने अभी बताया था, आपने सुना नहीं। शुद्धि पत्रक में देखकर आप सब शुद्धि करके लाना, मैंने दो बार बताया था, पीछे शुद्धि पत्रक लिखा है, वो शुद्धि पत्रक में जो जो बातें लिखी है उसके अनुसार अपने पुस्तकों में करेक्शन करना, हाँ तो घोटाला भी नहीं होगा। और फिर भी मैंने बताया था, अभी आप ध्यान देना जरा बराबर, हाँ देखो 43 किया आपने, हाँ अब मैं ये बता रही हूँ, ये जो छेद है वो असमान है, कहीं 343 है, कहीं 49 है, कहीं 2240 है, तो 2240 गुना 49 करते हैं तो 1,09,760 आ जाते हैं, और 343 का भी उसको भाग जाता ही है, 343 गुना 320 करेंगे तो यही फर्क फिगर आएंगे। तो पहले फिगर में जो ऊपर जो अंश है उसको 320 से गुणा करेंगे, पहले दूसरी और तीसरी फिगर में। ये 588 वाली है, वहाँ ऊपर 2240 से गुणा करेंगे हम, और जहाँ नीचे छेद 2240 है वहाँ 303 ऊपर है उसको 49 से गुणा करेंगे, और बाद में इन सबकी टोटल करेंगे। समझ छेद किया ना, तो हम फिर टोटल कर सकते हैं, सबका मिलकर एक कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अभी इसके हम टोटल करेंगे, तो मैंने निकाली टोटल, इसमें थोड़ा फर्क है, कल फिर मैं देख के बताऊंगी आपको। यहाँ तो देखो ना, 10, 24, 19, 83, 487 है, और मैंने निकाली तो 10, 24, 19, 16, 287 आती है। अभी वो फिर करके मैं देखूंगी, फिर आपको करेक्शन करना है तो बताऊंगी। एक्चुअली मैंने की थी, मगर फिर कंफर्म करना है, आप भी कर लेना देखना, क्योंकि मैंने तो इतना तो आसान करके बताया है कि कौन से छेद देना है, कहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, और इस पर कर लो आप कैलकुलेटर पर, 0 0 0 ऐसे ही रखना, और बाकी तो फिगर्स आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी फिगर तो आती नहीं उसमें भी, तो 0 रखना बाजू में, 0 की तो हम 4 0 करना, और बाकी की गुणाकार करके वहाँ लिख देना, और फिर जितनी टोटल आएगी उसको हम हर एक की जितना संख्या आई उसकी टोटल करेंगे हम, तो उत्तर आएगा। तो मैंने निकाले थे, फिर भी कन्फर्मली मैं कल बताऊँगी आपको। अब हम नहीं, मैंने कैलकुलेटर पर ही निकाली है सब फिगर्स, और ये उसका उत्तर आता है, फिर भी मैंने कहीं नहीं कुछ रॉन्ग किया है, ये फिर मैं कंफर्म करूँगी कल, फिर आपको कल करेक्शन करना है तो बताऊँगी फिगर, आप भी कर लेना। हाँ, अच्छा तरीका है, भूखे नहीं सबसे सुखी है हाँ देखो देखो, अभी हम आगे पढ़ेंगे। मंजू बहन कोई हाँ कोई प्रश्न है तो पूछो। हाँ हाँ, हम अभी 55 पेज पर आ गए, 56 नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे, और फिर आप बाद में पूछेंगे क्या कह रहे थे। हाँ, साथ में चले तो अच्छा है ना। देखो 56 पेज पर, इस वात रुद्ध क्षेत्र को हम क्यों ये सब देख रहे थे, प्रतर समुदात वो तो ये चल रहे थे ना, उसकी बात चल। हाँ, समुद्रघात की बात के, इस वातरुद्ध क्षेत्र को घनलोक में से घटा देने पर, 343 घन राज्यों में से इतना घटा देना रिमेनिंग है, वो क्या है, प्रतर समुद्रघात को प्राप्त केवली का क्षेत्र कुछ कम लोक प्रमाण होता है। आप कहेंगे पहले ही बता देते तो हमको मान्य था। प्रतर समुद्रघात को प्राप्त केवली का यह क्षेत्र, अभी वो चार लोक जो हमने देखे थे, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, सामान्य लोक, उससे कितने गुना है वो बताएंगे। तो प्रतर समुद्रघात को प्राप्त केवली का यह क्षेत्र अधोलोक के प्रमाण रूप से करने पर कुछ अधिक, अधोलोक के चौथे भाग से कम दो अधोलोक प्रमाण होता है। क्या कहते हैं, दो अधोलोक, अधोलोक को दो गुना करना, फिर उसमें से अधोलोक का चौथा भाग कम करना, और उसमें थोड़ा मिला देना, ऐसा कहते हैं। तथा इसे ऊर्ध्वलोक के प्रमाण रूप से करने पर, इसका अर्थ क्या है, इफ वी कंपेयर टू ऊर्ध्वलोक का प्रमाण, हमको मालूम है अधोलोक का ऊर्ध्वलोक का कितना प्रमाण है, कितना है, हाँ 196 और 147। हाँ, तो उसके प्रमाण से करने पर ऊर्ध्वलोक के कुछ कम, तीसरे भाग से अधिक दो ऊर्ध्वलोक प्रमाण होता है, यानी दो ऊर्ध्वलोक में ऊर्ध्वलोक का कुछ कम तीसरा भाग अधिक मिला देना, वो नीचे लिखा है उन्होंने ऊर्ध्वलोक, तो इतना होता है। अब उसका विशेषण, जगत श्रेणी के जितने प्रदेश हो उतने जगत प्रतर प्रमाण सर्वलोक है, ये तो हमें मालूम है, जगत कितने जगत प्रतर है, जगत श्रेणी प्रमाण जगत प्रतर है, एक लोक में जगत प्रतर कितने हैं, तो जगत प्रतर इंटू जगत श्रेणी। और अभी हमने जो वात वलय का जो निकाला था घनफल, वो विशिष्ट इतने योजन जगत प्रतर हमने निकाला था। कितने निकाला था देखो, ये जो पिछले पेज पर हमने देखा था, अभी ये जो 10, 24, 19, 83 इतने योजन निकाला था। यहाँ लिखा है ना, फिर उन्होंने वही फिगर यहाँ लिखी है। हाँ, इसमें से अभी ये जो हमने एक्स नंबर ऑफ योजन निकाले थे, अभी जो उत्तर निकाला था, इतने योजन प्रमाण जगत प्रतरों के घटा देने पर, ये वात वलय का पूरा घनफल है, इसको घटा देंगे तो प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली का क्षेत्र होता है। अभी इन कंपेयर टू अधोलोक ये कितना है उसकी बात निकाल रहे। अधोलोक का प्रमाण 196 घनराजु है, इसलिए यदि इसे अधोलोक के प्रमाण रूप से किया जाए तो दो अधोलोकों का प्रमाण 392 घनराजुओं में, ये जो अभी हमने संख्या निकाली थी, इतने योजन प्रमाण जगत प्रतर अधिक अधोलोक के चौथे भाग प्रमाण 49 घनराजु घटा देने पर प्रतर समुद्धात को प्राप्त केवली का क्षेत्र आता है। क्योंकि थोड़ा अधिक करके हमने ऊपर पढ़ा, देखा देखो अधोलोक के प्रमाण रूप से करना कुछ अधिक, तो कुछ अधिक में वो मिला दिया उन्होंने, कुछ अधिक अधोलोक का चौथा भाग से कम दो अधोलोक प्रमाण। अब ऊर्ध्वलोक के साथ कंपेयर कर रहे, ऊर्ध्वलोक का प्रमाण 147 घनराजु है, इसलिए यदि इस क्षेत्र को ऊर्ध्वलोक के प्रमाण रूप से किया जाए तो ऊर्ध्वलोक के एक तिहाई घनराजु 49 में से, अभी जो हमने निकाला इतने योजन प्रमाण जगत प्रतरों को घटाकर जितना रहे उसे दो ऊर्ध्वलोक के प्रमाण 294 घनराजुओं में से जोड़ देने पर प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली का क्षेत्र आ जाता है। हम कंपेयर किए हमने उसमें। हाँ, अब लोकपूरण की बात करेंगे। यहाँ समुद्घात की बात चल रही है, केवली समुद्घात की, क्योंकि संयोग केवली गुणस्थान की बात हमारी चल रही है। हाँ, लोकपूरण समुद्घात को प्राप्त केवली भगवान कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो सर्वलोक में रहते हैं। ये तो आसान है ना। अब आगे का सूत्र ये इन्होंने इतना ही बता दिया, क्योंकि हमने वो क्षेत्रफल निकाल के, घनफल निकाल के देखा था, 343 घनराजो। अब 5 नंबर का सूत्र कहते हैं, आदय से न शुरू हुआ, ओ से बता दिया, गुणस्थानों के जीवों का क्षेत्र बता दिया। अभी आदेश यानी मार्गणाओं में जो जीव है, अलग अलग मार्गणाओं में वो कितना क्षेत्र रोकते हैं उसकी बात करेंगे। आदे से न गदियाणु आदे न, यानी गति अनुवाद की अपेक्षा से, निरय गदिये नेरयेसु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव असंजत सम्मा इट्ठी ती केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य जदि भागे। खाली अकेले त्रसनाली में, वो भी अधोलोक में, तो लोक के असंख्यात भाग में है, उसको बताएंगे। देखो नीचे उसका अर्थ, आदेश की अपेक्षा गत्यनुवाद, गत्यनुवाद यानी गति अनुवाद, उससे नरक गति में, नारकियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान के जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। इस सूत्र में अभी एक एक शब्द क्यों लिया उसकी बात करेंगे। आदेश पद के ग्रहण करने का फल ओघ का प्रतिषेध करना है। यहाँ हम मार्गणा की अपेक्षाओं से बताएंगे, इसलिए ओघ का प्ररूपण नहीं चल रहा है, आदेश का चल रहा है। गति पद के ग्रहण करने का फल इंद्रियादि का प्रतिषेध करना है। इंद्रियादि कहने इंद्रियादि मार्गणाओं का, मार्गणाओं का, खाली इंद्रियों का नहीं। प्रतिषेध यानी निषेध, रूल आउट। हम जब गति मार्गणा की बात कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, हम अन्य मार्गणाओं की बात नहीं कर रहे, वो उसका निषेध हुआ। कल बात आई ना विधि और निषेध, हम अन्य मार्गणाओं का निषेध कर रहे, तो विधि किसकी चल रही है अभी? अस्थि गति गति मार्गणा की, उसकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो अन्य की बात नहीं कर रहे, उसका निषेध हो गया। अनुवाद पद के ग्रहण करने का फल, सूत्र के अकर्तुकत्व का, अकर्तुत्व चाहिए, कर्तुकत्व ऊपर क्या लिखा है, अकट्टिवुत्त परुवण फलम, ठीक है, अकर्तुकत्व का प्ररूपण करना, यानी ये किसी सौक्ष्म ज्ञानियों ने सत्र नहीं बनाया है, जो मूल में भगवान के द्वारा बताया हुआ चला आ रहा है, ये बताने का फल है। इसलिए अनुवाद कहा, यानी अकॉर्डिंगली सर्वज्ञ भगवान के उपदेश के अनुसार ये सूत्र है, ये बताने के लिए। नरक गति पद के निर्देश करने का फल, देव गति आदि का प्रतिषेध करना है, ये फिर आया प्रतिषेध। गति मार्गणा में चार गतियां हैं, तो उसमें अकेले नरक गति की बात चल रही है, जिसकी बात चल रही है उसकी बात यहाँ उसका नाम लेकर बताएं, उससे ही सिद्ध होता है कि अभी हम देवगति की बात नहीं कर रहे, मनुष्य गति की बात नहीं कर रहे, तिर्यंच गति की बात नहीं कर रहे, उसको कहते उसका प्रतिषेध हुआ। नारकियों में इस प्रकार के वचन के देने का फल, वहाँ के क्षेत्र में रहने वाले पृथ्वीकायिक आदि का प्रतिषेध करना है। ख्याल है ना, नरकों में पृथ्वीकायिक भी रहते हैं, तो नरकों में रहने वाले नारकियों का क्षेत्र ऐसा बता रहे। पृथ्वी तो सब जगह है ना, अधोलोक में भी ऊर्ध्वलोक में सब जगह है, तो वहाँ अन्य जीवों को कोई समझ में नहीं ले, इसलिए यहाँ कहते हैं नारकियों की बात चल रही, नारकियों का क्षेत्र निकाल रहे, क्योंकि जहाँ नारके वहाँ जो स्थावर जीव भी वहाँ पर है उसकी बात नहीं हो रही है। सूक्ष्म जो कुछ है, हाँ अभी अपना विषय ये नारकियों का चल रहा है, वहाँ हो गए अन्य भी जीव हो गए, सूक्ष्म जीव तो सर्वत्र ही है, अभी बादर जहाँ यथा योग्य जहाँ है वो उसकी बात करेंगे, उसका विषय आएगा तब। शंका, लोक के असंख्यात वे भाग में रहते हैं, केवल इतना कहने पर शेष लोकों का ग्रहण कैसे हो सकता है? तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि क्षेत्र और स्पर्शन अनुयोग द्वार के सूत्र देशामर्शक है, इसलिए लोक के असंख्यात वे भाग में रहते हैं इतने पद के कहने से शेष लोकों का भी ग्रहण हो जाता है। ये देशामर्शक की बात धवला भाग एक में आई थी, उसको वो ताल वृक्ष का ऐसा उदाहरण दिया था कि हम वनस्पतियों को बताना है तो हम उदाहरण एक दृष्टांत ताल वृक्ष का दिया, तो सभी वनस्पतियों में समझना, ऐसा देशामर्शक कहा था, यानी एक कुछ बात बताई तो एप्लीकेबल टू अदर्स ऑल्सो। तो लोक के असंख्यात वे भाग कह दिया, उसमें लोक की भी बात आ गई, ऐसा कहना चाहते हैं, शेष लोकों का भी ग्रहण होता है, यानी लोक का असंख्यात भाग, तो अधोलोक का कितना भाग, ऊर्ध्वलोक का कितना भाग, मध्यलोक का, वो सब बातें इसमें गर्भित है, ऐसा कहना चाहते हैं। अब विशेष पदों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि नारकियों का क्षेत्र कहते हैं। विशेष पद कौन कौन से हो गए यहाँ, कौन कौन से समुद्घात वगैरह सब हमने पहले देखे थे, पहले में पहले स्वस्थान, स्वस्थान हाँ विहार व स्वस्थान, फिर वेदना है, कषाय है, मारणांतिक है, आगे आहारक होगा नहीं, वैक्रेक होगा, अपृथक विक्रिया वहाँ होती है, तेजस होगा, आहारक का और केवली का कोई संबंध नहीं, उपपाद होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो देखो यहाँ लिखते हैं। तो मिथ्या दृष्टि नारकियों का क्षेत्र स्वस्थान, स्वस्थान विहारवत, स्वस्थान वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रेक समुद्घात को प्राप्त हुए मिथ्या दृष्टि नारकी जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, पहले इतनी की बात की, तो कहते हैं सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। वो कंपेरिजन तो पूरे लोक की अपेक्षा ही कहते कि लोक का असंख्यात भाग, ऊर्ध्व लोक का असंख्यात भाग, अधो लोक का असंख्यात भाग, उतने क्षेत्र में रहते हैं, वो क्षेत्र कितना है वो बताना है उनको, और अढ़ाई द्वीप प्रमाण मानुष लोक से संख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। अब इसके अर्थ के प्ररूपण करने के लिए यहाँ पर नारकियों की अवगाहना कहते हैं, अब नारकियों की अवगाहना निकालेंगे, उसका उच्छेद बताएंगे, तो उसके कितवा भाग उसका विष्कम्भ होगा, हमने पहले देखा था देवों के लिए मनुष्य आठवा भाग, पहले हमने सूत्र देखा था उसका, दसवां, नौवां और आठवां, देवों के लिए और आहारक शरीर वालों के लिए दसवां भाग, मनुष्यों के लिए नौवां भाग, और अभी नारकियों के लिए बताएंगे देखो आठवां भाग। वह इस प्रकार है। अब अलग अलग पृथ्वियों में अवगाहना अलग अलग है, विषकंभ हाइट वगैरह। पहली पृथ्वी से, पृथ्वी के पहले पाथड़े में, पाथड़े ने पटल लेस उसके अलग अलग। नारकियों का उच्छेद तीन हाथ है, और तेरहवें पाथड़े में सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल नारकियों का उच्छेद है। पहले पृथ्वी के तेरह पाथड़े हैं, उसमें पहले पाथड़े में तीन हाथ, पाथड़ा नहीं ले, जैसे हम मंजिल कहते ना, वैसे वहाँ पृथ्वी में ही अलग अलग लेयर्स है, उस लेवल पर अलग अलग नरक है। सब मिलकर एक नरक के इतने पाथड़े नहीं है, जो बिल है पहले पाथड़े के बिल, दूसरे पाथड़े के बिल, ऐसे पृथ्वी तो बहुत मोटी है। हाँ तेरह है, तो ये पहले पाथड़े में कुछ बिल हो गए, दूसरे पाथड़े में, बीच बीच में फिर पृथ्वी आती है। पृथ्वी है ना, पूरी एक पृथ्वी है। पहले पृथ्वी के अलग अलग पाथड़े हैं। पृथ्वी के भी हमने ऊपर के भाग देखे थे ना, पूरी चित्रा पृथ्वी है, वो खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग, ऐसे तीन भाग उसके हैं। तो उसमें भी ऊपर भवनवासी है, फिर अंतरों के निवास है, और फिर जो नीचे का बहुल है उसमें फिर ये नरक भूमि है, उसमें ये इतने तेरा पटल है या पाथड़े हैं पहले नरक के अंदर। ये सब पहले नरक में आएंगे इतने सारे जो है। तो उस पृथ्वी के यानी बीच बीच में दो पटलों के बीच में पृथ्वी ही, कंटिन्यूस पृथ्वी ही है। पृथ्वी के अंदर जो कुछ हॉलो है बीच बीच में, वे नरक है, उसको बिल कहते हैं। वो तो असंख्यात योजनों के होते हैं, हमको बिल यानी ऐसा लगता है वो चूहे का बिल होगा ऐसा। देखो तो तेरहवें पाथड़े में, पहले पाथड़े में तीन हाथ, अभी एवरेज निकालेंगे जो कुछ करेंगे। तेरहवें पाथड़े में सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल नारकियों का उच्छेद है। भूमि में से मुख को घटाकर, ये भूमि और मुख क्या है, हाँ, भूमि किसको कहना और मुख किसको कहना, भूमि यानी जमीन। देखो दो में कंपेयर कर रहे हैं हम, संख्या में जो हाइट जो है, हाइट की अलग अलग है, तो मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट, इसको यहाँ भूमि और मुख कहा। बॉटम वाला, हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम, हमको एवरेज निकालना है। तो क्या कहते हैं, भूमि में से मुख को घटाकर उच्छेद का भाग देने पर जो लब्ध आवे वह वृद्धि का प्रमाण होता है। वृद्धि का प्रमाण यानी पर पटल कितनी वृद्धि होती है, जिसको हम चय कहते हैं, कितनी वृद्धि होगी, हाँ, यूनिफॉर्म। अब जिस पटल के नारकियों के उच्छेद का प्रमाण लाना हो उसे इच्छा मानकर, यानी हमको उसका निकालना है, उससे वृद्धि को गुणित कर दो और मुख का प्रमाण जोड़ दो, इसका जो फल होगा, ये गाथा रहेगी क्या, हाँ, वही इच्छित पाथड़े के नारकियों का उच्छेद समझना चाहिए। हम इसको गाथा को पढ़ेंगे। मुह भूमि विशेषम मिदु उच्छेह भजदम मिसाहवे वड्ढी वड्ढी इच्छा गुणिदा मुह सहिदा साफलम होदी। जो अभी हमने पढ़ा ना अर्थ, उसी की बात कहते हैं कि भूमि में से मुख को घटा दो, माइनस करना, और उसको उच्छेद से भाग दो, तो जितना लब्ध आवेगा वह वृद्धि का फल है। अभी हमको मिनिमम से कितनी वृद्धि हुई पर पटल, ऐसा देखना है। चय यानी एक्चुअली यहाँ विशिष्ट उसमें गुणा करने पर गुणित प्रमाण में है, चय में हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं। हाँ यही तो वृद्धि को गुणित कर दो और मुख का प्रमाण जोड़ दो, आदि वाला है उसमें जोड़ देना, जो फल होगा वही इच्छित पाथड़े के नारकियों का उच्छेद समझना चाहिए। इसी को फिर दोबारा समझाते हैं विशेषार्थ में। यद्यपि द्वितीयादि नरकों में प्रथमादि नरकों के अंतिम पटल के नारकियों का उच्छेद मुख हो जाता है, यानी दूसरे नरक के लिए मिनिमम जो है वो पहले नरक की जो मैक्सिमम है वो दूसरे नरक के लिए मिनिमम हाइट होगी, उसके पाथरों में फिर नीचे नीचे की ओर हाइट बढ़ेगी। परंतु प्रथम नरक में पहले पाथड़े के ही नारकियों का उच्छेद मुख रहेगा, उसी को मुख यानी मिनिमम वाले में उसको ही रखेंगे, उसके कंपेयर टू उसमें ही उतने गुना वृद्धि 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 कहेंगे हम। अतएव उक्त गाथा के नियमानुसार पहले नरक के पहले पाथड़े के नारकियों का उच्छेद नहीं निकाला जा सकता है। पहले नरक में पद का प्रमाण 12 और शेष नरकों में ये पद क्या होते हैं? बोलो अरविंद भाई, देवेंद्र भाई, नहीं मालूम। हाँ, हम अभी तक वो गच्छा वगैरह कभी सुना होगा, कोई आयाम निकालते हैं। अभी यहाँ वृद्धि कितने बार हुई? पहले नरक में 13 पाथड़े हैं, 12 बार वृद्धि हुई, तो 12 को गच्छ कहेंगे या पद कहेंगे? वही गच्छ कहो या पद कहो, एक ही बात है। ये तो हमको तो कहाँ मालूम है। ये तो यहाँ तो सब कॉमन सेंस ही चलेगा। देखो समझ में, वृद्धि हम कितने बार देखेंगे? पहले के लिए वृद्धि का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसको हमने फिक्स रखा है, और एज कम्पेयर टू उसमें कितनी कितनी वृद्धि है उतने उसमें हम मिलाते जाएंगे। दूसरे पाथड़े में जो वृद्धि है वो पहले में मिलाएंगे तो दूसरे का प्रपोर्शन आएगा, फिर तीसरे में जो वृद्धि है वो उसमें मिलाएंगे, पहले में ही मिलाना दूसरे की वृद्धि तीसरे की वृद्धि तो तीसरे का आएगा, पहले में चौथी की जो वृद्धि है वो मिलाएंगे तो डायरेक्ट उसका प्रपोर्शन आएगा। ये बात तो 12 का पद यानी 12 गच्छ, उसका 12 बार ये वृद्धि होगी पहले नरक में, तो पद का प्रमाण यानी उसको गच्छ भी कहते हैं, गच्छ का प्रमाण 12। और शेष नरकों में जहाँ जितने पाथड़े होंगे वहाँ उतना पद का प्रमाण रहेगा। ये ख्याल में है? पहले नरक में 13 पाथड़े हैं, परंतु पद का प्रमाण 12 ही है, वृद्धि 12 बार होगी, परंतु नीचे के सभी जो पाथड़े हैं वो सभी वृद्धि के क्रम में ही होंगे, इसलिए उसका जितना गच्छे 7 है या जो 5 है वो उतना ही पूरा का पूरा लेना है। ये बात ख्याल में आई? अब आगे बढ़े। पहले नरक में दूसरा पाथड़ा पहला और अंतिम पाथड़ा 12वां गिना जाएगा वृद्धि के लिए। दूसरे पाथड़े को पहला यानी वृद्धि का पहला स्थान, पहला पद, पहला गच्छ, वहां पहली वृद्धि हुई, क्योंकि मुख को हमने फिक्स रखा है, तो फिर नीचे के 12 को गिनाएंगे, तो 12 में से पहला कौन है? जो दूसरा पाथड़ा है वो 12 में से पहला स्थान है, बराबर? अश्विन भाई को कुछ कंफ्यूजन है? हाँ ठीक है। हाँ उदाहरण देते, अभी प्रथम नरक में मुख का प्रमाण 3 हाथ और भूमि का प्रमाण, भूमि यानी अभी मैक्सिमम हाइट, 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल। पहले हमने पढ़ा था ना इसको, पिछले पेज पर हमने यही पढ़ा था, और फिर उसके अभी हम देख रहे हैं, 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल। एक धनुष में 4 हाथ, ये अभी प्रोपोर्शन बता रहे हैं, एक धनुष में हाथ कितने हैं? 4, और एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। कल हमने देखा था ना, एक धनुष में 96 अंगुल होते हैं, तो एक धनुष में हाथ होते हैं चार, चार हाथ का एक धनुष होता है और 24 अंगुल का एक हाथ होता है। इस प्रमाण के अनुसार मुख के अंगुल, अभी हम अंगुलों में अगर गिनेंगे क्योंकि समान वृद्धि निकालनी है तो सब अंगुलों में हम करेंगे उसको ट्रांसफर, तो तीन गुना यानी तीन हाथ है उसको 24 से गुना करेंगे तो 72 अंगुल हो गए। तो मुंह कितना है तो 72 अंगुल है, और भूमि में कितने अंगुल हैं तो 7 धनुष के हाथ करने हैं, तो 7 गुना 4 और फिर तीन हाथ थे तो तीन को 24 से गुणा करना, यानी 7 गुना 4 को प्लस 3 करना, उसको एक ब्रैकेट कर दो और बाद में 24 से गुणा कर दो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ख्याल है मैं क्या कहने जाती हूँ? देखो धनुष के पहले अंगुल करो, नहीं तीन तक एक ब्रैकेट करो, हाँ 7 गुणा 4 का एक छोटा ब्रैकेट करो, हाँ 3/24 का नहीं करना, प्लस तीन। देखो देखो हमारे पास धनुष है, हाथ है और अंगुल है, कितने देखो देखो कितने धनुष है, 7 धनुष, हाथ कितने हैं, 3 हाथ, और अंगुल कितने हैं, 6 अंगुल। तो पहले क्या करेंगे, धनुष के हाथ करेंगे, धनुष के 7 चौक 28 हो गए, 28 प्लस 3 करना पहले, ये 3 करने के बाद उसको 24 से गुणा करो और बाद में जो संख्या है उसमें 6 ऐड करो। जैसे हम घंटा और फिर मिनट और सेकंड करते हैं, कैसे उसको मल्टीप्लाई करके फिर कन्वर्ट करते हैं, वैसा ही है। तो पहले 7 और 4 का गुणा करो, फिर 3 मिला दो, फिर 24 से गुणा करो और फिर 6 मिला दो, ये 750 हुए, 28 प्लस 3 31 हुए गुणा 24 प्लस 6। उक्त गाथानुसार इसकी प्रक्रिया करने पर, गाथा में क्या कहा, मुख को भूमि में से घटा दो, तो 750 में से मुख 72 को घटा दिया, करेक्शन हाँ। आगे का करेक्शन मैंने भी नहीं देखा, सात सौ 57 है और ये 750 लिखे उन्होंने अलग अलग करके बताए हैं, ये उन्होंने जो अभी मैंने ब्रैकेट अलग अलग लिखने को बोला था ना, वही वैसी बात है ये। उन्होंने 24 को दो अलग अलग से गुणा किया है, वो जो हमने ब्रैकेट करने के कारण वो हो गया अपना, कॉमनली हमने 24 को गुणा कर दिया है। उन्होंने हर एक के अंगुल किए, जैसे 7 धनुष को 96 से गुणा करो तो अंगुल हो गए डायरेक्ट, 3 हाथ को फिर 24 से गुणा करो तो अंगुल हो गए, बात एक ही है, हमने ब्रैकेट डालने के कारण वो वैसा ही हो गया। तो ये 757 था ही नहीं, उन्होंने लिखने में वो घोटाला कर दिया, 750 ही था, उन्होंने 757 लिखा है अशुद्धि में, अशुद्धि लिखते हुए अशुद्धि हुई, उत्तर तो उतना ही आता है। और ये 678/12 लिखा है तो पहले तो 678 आता है और बाद में उसको 12 का भाग देना है, 12 अपना पद का प्रमाण है ना, कितने बार वृद्धि हुई, तो 750-72 इज इक्वल टू 678 लिखना चाहिए, एक स्टेप और बढ़ाना चाहिए और बाद में उसको 12 से डिवाइड करना, इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू में तो 678 हो जाएंगे। ये जो इज इक्वल टू है ना, वहाँ एक और बढ़ा देना, ये वहाँ एडिशन करना, 678 लिखना, फुल स्टॉप देना, और फिर 678 बाय 12 इज इक्वल टू, वो आगे का तो स्टेप है ही वहाँ पर। वो 12 कहाँ से आए, वृद्धि 12 बार होने वाली है, तो 12 ये पद का प्रमाण है, पद यानी गच्छ। हाँ, अभी हमने लिखा ना 678 डिवाइडेड बाय 12, तो वो 56 पूर्णांक एक द्वितीयांश, या उसके ऊपर अंगुल और हाथ में करनी है तो 113 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, उसमें कितने हाथ और कितने हैं, देखो 56 पूर्णांक यानी 56.5 हुए, 56.5 में से अंगुल आए हैं, अंगुल में से हाथ करने हैं तो कितने से 24 से भाग देना पड़ेगा, तो 24 दुनी 48, तो दो हाथ आ गए, और कितने रहे, 48 और 56 8 रहेगी, 8.5 अंगुल होते हैं, यानी पर पटल वृद्धि का जो प्रमाण है दो हाथ और 8.5 अंगुल, या डायरेक्ट हमको कहना है तो 56.5 अंगुल। यह प्रथम पृथ्वी के प्रतिपटल में वृद्धि का प्रमाण है, प्रतिपटल वृद्धि का क्रम। तो दूसरे पटल में कितने हो गए, हाँ पहले मुख कितना है अपना, तीन हाथ, तीन हाथ अपना बेस है, प्लस वृद्धि कितनी हुई, दो हाथ और 8.5 अंगुल, तो प्लस 2 और 8.5 उसमें ऐड करना, तो 5 हाथ और 8.5 अंगुल दूसरे पटल का होगा। और तीसरे पटल में ये एक बार वृद्धि हुई, तीसरे पटल में दो गुना वृद्धि हुई, तो उसमें उतने उतने मिलाते जाना, बेस में ही मिलाते जाना, जितनी वृद्धि है उतनी। हाँ आप ही बताओ, हम निकालेंगे, तीसरे में निकालना है, तो तीसरे यानी गच्छ का स्थान कौन सा है, वो दो है, तो वृद्धि कितनी हुई, एक बार वृद्धि कितनी होती है, हाँ तो 56.5 हुई, 56.5 अंगुल एक बार होती है, तो दूसरे बार के लिए कितने होगी वृद्धि, उससे डबल होगी, यानी अगर हाथ में कहना है तो 4 हाथ और 17 अंगुल, वो मुख में ऐड कर दो। हाँ, हमेशा मुख में वृद्धि किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिनल से, तो उसमें मिला देना, तो ओरिजिनल 3 हाथ है प्लस अभी 4 हाथ और 17 अंगुल उसमें मिला देना, तो तीसरे नरक यानी तीसरे पटल का, नरक का नहीं, तीसरे पटल का वहाँ उच्छेद मिलेगा अपने। देखो अब यदि हमें ये बताया गया प्रथम नरक के पांचवें पटल का उच्छेद प्रमाण निकालना है, तो अभी पांचवा पटल है तो पद कौन सा है, चौथा है, तो वृद्धि को हम 4 से गुणा करेंगे, बराबर। पूर्वोक्त नियमानुसार 56.5 अंगुल को 4 से गुणित कर प्रथम पटल के उच्छेद का प्रमाण उसमें जोड़ देना चाहिए। ये 56.5 को 4 गुणा किया, इतने अंगुल आए, 56.5 गुणा 4 प्लस 72, तो उसका 298 अंगुल आया, 298 अंगुल। अब 298 अंगुल में से अगर हमको धनुष करने, तो 96 अंगुल का एक धनुष हो जाता है। देखो इनिशियल जो हाइट है, तीन हाथ के 72, हाँ तीन हाथ के 72, मुख के उच्छेद है, मुख का उच्छेद, बेस अपना 72 अंगुल का है, ये अंगुलों में निकाल रहे सब। एक बार 56.5 अंगुल की वृद्धि होती है, हमको पांचवे पटल का प्रमाण निकालना है, तो 4 बार वृद्धि होगी, तो 4 बार वृद्धि यानी 56.5 गुणा 4, तो 56.5 × 4 उसका प्रमाण आता है 226, और पहले का मुख का प्रमाण अपना 72 अंगुल है, तो उसमें मिलाएंगे तो टोटल 298 अंगुल आ गए। अभी हाँ, वो पहले का 72 वो कंटिन्यूस है, डायरेक्ट लिखते तो भी चल जाता, कोई बात। तो 298 अंगुल आ गए। 298 पहले उन्होंने हाथ किए और बाद में उसके धनुष किए हैं, तो हाथ करने के लिए 24 से भाग देंगे, तो 24 से भाग देंगे तो 12 हाथ और 10 अंगुल आते हैं, बराबर। और 12 हाथ में धनुष कितने हो गए, 4 हाथ का एक धनुष, तो 3 धनुष, अभी हाथ कुछ बचे ही नहीं, और अंगुल 10 अंगुल, यही ऊपर क्या टेबल देखेंगे अभी। हाँ, यही प्रथम पृथ्वी के पांचवें पटल के नारकियों के उच्छेद का प्रमाण है। अभी ऊपर देखते हैं, प्रस्तर यानी पटल, 1 से 13 पटल यहाँ लिखे हैं पहले नरक के, उसमें जो भूमि है वो 3 हाथ, भूमि यानी पहले पटल का जो हाइट है वो 3 हाथ है, बराबर। आगे क्रम से वृद्धि होगी, तो दूसरे नरक के लिए, दूसरा नरक नहीं, दूसरा पटल, देखो हम क्रम से देखेंगे। दूसरे पटल में हमने कितने देखा था, कितनी वृद्धि हुई, 56.5 अंगुल यानी 3 हाथ प्लस 56.5 अंगुल, अंगुल को हमको हाथ करना है तो 24 से भाग देंगे। चौबीस दोनी 48, 3 हाथ प्लस 56.5 अंगुल है, फिर धनुष में करना है ना, इन्होंने धनुष में बताया। अच्छा, 72 प्लस देखो, 7 × 8 7 × 5 = 12 128। उसमें से 96 माइनस करेंगे तो एक धनुष हो गया, तो एक धनुष 96 निकाल दिए, 32.5 रह गए, 32.5 में से 24 निकालो तो एक हाथ होगा, 24 निकाले 8.5 रह गए, तो देखो ये दूसरे स्थान, दूसरे पटल में एक धनुष, एक हाथ और 8.5 अंगुल है। अब तीसरे में 2 गुना वृद्धि है, 56.5 को 2 गुना करना है यानी 113 हुए, तो पहले 72 + 113 185 अंगुल आ गए, बराबर। 185 9 × 2 = 18 हाँ नहीं, एक का ही भाग हो जाता है, 96 गए उसमें, 96 अंगुल निकाले नहीं, एक धनुष हो जाएगा, 89 रह गए यहाँ, 89 अंगुल में से इसके हाथ करने हैं, तो 24 का भाग देंगे, 24 × 72 24 चौक का नहीं जाता ना, हाँ ये करेक्शन अभी अरविंद भाई यही बोल रहे थे, 24 × 72 और 17 अंगुल रह जाएंगे, यानी जो तीसरा पलटा है उसमें 2 हाथ के बदले 3 हाथ, तीसरे पटल में 3 हाथ और 17 अंगुल, बाकी चेक किया आपने, मेथड समझ में। अभी चौथे पटल में निकालना है तो 3 बार वृद्धि यानी 56.5 को 3 गुना करो, वो ओरिजिनल 72 में मिला दो और फिर उसके धनुष और हाथ करो, धनुष हाथ और अंगुल, यही पद्धति से यानी चौथे पटल में 2 धनुष 2 हाथ 1.5 अंगुल, पांचवे में 3 धनुष और 10 अंगुल जो अभी हमने निकाल के उन्होंने बताया है, यहाँ अभी बताया था ना। छठे में 3 धनुष, 2 हाथ, 18.5 अंगुल। सातवें में 4 धनुष, 1 हाथ, 3 अंगुल। आठवें में 4 धनुष, 3 हाथ और 11.5 अंगुल। नौवें पटल में 5 धनुष, 1 हाथ और 20 अंगुल। दसवें पटल में 6 धनुष और 4.5 अंगुल। ग्यारहवें पटल में 6 धनुष, 2 हाथ और 13 अंगुल। बारहवें पटल में 7 धनुष और 21.5 अंगुल और 13वें पटल में 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल। ये पहले नरक की हुई। यहाँ पहले नरक की बात नहीं, पहला नरक। अब यहाँ नीचे क्या लिखते हैं देखो, इस पूर्वोक्त गाथा के नियमानुसार पहले नरक के पहले और 13वें पाथरे के अतिरिक्त शेष 11 पाथरे के नारकियों का उच्छेद ले आना चाहिए। उन अवगाहनाओं का प्रमाण यह है, देखो मूल का नक्शा। ये मूल का नक्शा जो अभी ऊपर लिखा है, ये सब हाइट है। प्रत्येक पटल के नारकियों की ऊंचाई लंबाई को क्षेत्रफल, तो वो विष्कम्भ निकालेंगे, वो विष्कम्भ के अनुसार परिधि निकालेंगे, परिधि को उच्छेद से गुणा करेंगे, यानी उसका क्षेत्रफल घनफल सब निकालेंगे। पहले पहले वो सबकी हाइट अलग अलग बता रहे हैं। अब दूसरी पृथ्वी के 11वें पाथड़े में नारकियों का उच्छेद 15 धनुष, लास्ट पाथड़े में। पहले नरक में 13 पाथड़े हैं, दूसरे नरक में 11 पाथड़े हैं, उसमें जो अंतिम जो 11वां पाथड़ा है उसमें उच्छेद 15 धनुष है। देखो ऊपर 11वें के कॉलम में देखो, 15 धनुष, 2 हाथ और 12 अंगुल है। और प्रथमादि शेष 10 पाथरों के नारकियों का उच्छेद पूर्वोक्त गाथा के नियमानुसार ले आना चाहिए। उनका अवगाहनाओं का प्रमाण यह है करके उन्होंने फिर मूल नक्शा देखो कहा, उसका विशेषार्थ कर रहे हैं। देखो मूल, उसका मूल यानी उसका जो पहले है भूमि, वो यहाँ की जो 13वां है वो उसकी भूमि हो जाएगी। पहले नरक के 13वें पाथरे में जो हाइट है वही दूसरे नरक के पहले पाथरे में है, तो भूमि वही ले लेंगे। और अंतिम उन्होंने बता दिया, फिर अपना सूत्र वही, ये मुख उनको, ये मुख हुआ भूमि ने, मुख हुआ मुख मैंने मिनिमम भूमि यानी वो जो लास्ट 3 हाथ नहीं 7 धनुष, एक एक मिनट। हाँ उसकी वृद्धि वो पहले पटल से ही होगी, यानी उसके आगे लेना है अपने को। हाँ देखो, दूसरी पृथ्वी में मुख का प्रमाण, ये मुख का प्रमाण उसके पहले पटल का नहीं है, पहले नरक के 13वें का पट, उससे वृद्धि कितनी है वो बताना है हमको। यदि हम डायरेक्ट कहेंगे पहले के अंतिम का हमने 12वां गच्छ कहा है और दूसरे के पहले के लिए हम 14 कहेंगे तो भी वही उत्तर आने वाला है। नहीं नहीं, के वृद्धि का प्रमाण अलग है यहाँ। हाँ हाँ, प्रतिपल वृद्धि का 2 हाथ। अच्छा अच्छा, हाँ ये वृद्धि का तो इसके लिए मिनिमम जो है मुख जो है वो पहले नरक का 13वां पटल लेना, और अंत कौन सा है मैक्सिमम, मुख किसको कहा, पहले नरक के 13वें पटल के हाइट को। और अभी भूमि किसको कहा, लास्ट में जो अभी 11वें का बताया है 15 धनुष, 2 हाथ और 12 अंगुल। और यहाँ सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल बताए। तो हाँ वो मुख होगा, भूमि में से मुख माइनस करेंगे। और अभी यहाँ पद कितने हो गए? 11 के 11 हो गए, क्योंकि मुंह हमने उसमें से नहीं लिया, पहले में से लिया है। वृद्धि का प्रमाण अलग निकाला, तो भूमि माइनस मुंह डिवाइडेड बाय 11 करेंगे, कल करेंगे। अच्छा चलो, आज का टाइम हो गया, इसका हम गणित कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान